शांति, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज जाने का दिन है ना, 8 तारीख को ये शिविर शुरू हुआ, अपने समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। तो ये शिविर क्या था, क्या लेके जा रहे हो आप साथ में, क्या लक्ष्य रहा? उस दिन प्रश्न उत्तर थे ना, तो उसमें भी एक प्रश्न था, आखिर जीवन का लक्ष्य क्या है। लेकिन समय का अभाव था, सभी प्रश्नों का उत्तर हम नहीं दे पाए थे। तो उस प्रश्न का उत्तर हम अभी देते हैं, क्योंकि यही तो करने आए थे यहाँ पर, वही तो साथ में लेके जाना है। सत्यनारायण की कथा सुनते हैं ना, तो उसका क्या बताते हैं उसमें, उस कथा का मकसद क्या होता है? नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बन जाए, और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बन जाए। और बड़े प्यार से वो सत्यनारायण की कथा करते हैं, सुनते हैं, है ना? तो लेकिन चूंकि सिर्फ यही मान्यता रही कि कथा सुनेंगे, पढ़ेंगे, भाग्य बनेगा, लेकिन ये कभी नहीं आया कि जो सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसको प्रैक्टिकल लाना है। तो परमात्मा वो सब प्रैक्टिकल कराने के लिए आया है। तो जब हम कहते हैं कि उस कथा में ये है कि नर ऐसी करनी करे श्री नारायण बन जाए, और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बन जाए, मतलब श्री लक्ष्मी श्री नारायण हम बनना चाहते हैं ना? हाँ, वो कथा कर रहे हैं, उस कथा का मकसद वो है, मतलब हम वो बनना चाहते हैं। कौन कौन बनना चाहते हैं? हाँ, सभी बनना चाहते हैं। बहुत बधाई हो आपको। लेकिन जरा ये भी बता दो, आखिर उस नारायण और लक्ष्मी में ऐसा क्या दिख रहा है जो मुझे लगता है मैं भी ऐसा बन जाऊं? क्या दिख रहा है उसमें? क्यों हम उसके जैसा बनना चाहते? अगर शरीर की आकृति देखें तो 2 हाथ पैर, आंख नाक कान बिल्कुल मेरे जैसा ही है ना। वो कोई 4 हाथ वाले तो नहीं है ना नारायण या लक्ष्मी। तो 2 आंख 2 कान, 1 नाक 1 मुख, 2 हाथ 2 पैर, ये जो हम सबको है वो भी उनको है। तो हम उनके जैसा अगर बनना चाहते तो उनमें क्या है विशेष, क्या है विशेष? हम सुबह से रात्रि तक जो मेहनत कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? कहाँ कहाँ मेरा समय और सोच लगा है सुबह से रात्रि तक? अच्छे दिखें, है ना? अच्छे दिखें ना, हम उसमें भी समय लगाते हैं ना। ये शरीर स्वस्थ रहे, ये शरीर फिट रहे। अगर दो फिगर आपके सामने रख दिए जाए, एक सुंदर और एक ना सुंदर, और आपको कहे आप पसंद करो आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा वाला फिगर पसंद करोगे? हाँ, सुंदर वाला, मतलब सुंदरता हमारी पसंद है। एक स्वस्थ शरीर है, एक अस्वस्थ शरीर है, कौन सा पसंद करोगे? स्वस्थ। एक बहुत मोटा है या दुबला है, लेकिन एक न तो मोटा है न तो दुबला है, कौन सा पसंद करोगे? हाँ, जो न मोटा है न दुबला है, ठीक है ना? तो सुबह से रात तक इस पे भी मेहनत है या नहीं है? हम कहते हैं हम बिजी लाइफ जी रहे हैं, तो ये बिजीनेस आखिर किस लिए है? इसमें भी तो कुछ समय जा रहा है हमारा या नहीं जा रहा है कि इसको सुंदर बना के रखें, इसको स्वस्थ बना के रखें, इसको फिट बना के रखें, है ना? तो लक्ष्मी नारायण का शरीर देख लो, अभी लाओ अपने सामने लक्ष्मी नारायण को। अभी आपने जो चॉइस की थी कि सुंदर वाला पसंद है, स्वस्थ वाला पसंद है, फिट वाला पसंद है, तो अब ये छवि सामने लाओ और देखो तीनों है इसमें। हाँ, सुंदरता भी है, स्वस्थता भी है और फिटनेस भी है। इसलिए हमें पसंद आता है कि हम भी ऐसे बने। और क्या है? हाँ, सुंदरता हो लेकिन चेहरे में स्माइल नहीं हो, मुस्कुराहट नहीं हो, वो खुशी वाली, वो शांति बिखेरने वाली, पसंद आए कि वो सुंदरता? भले सुंदरता है हाँ, तो फिर से ये सुंदर शरीर, इधर भी सुंदर शरीर, लेकिन इधर चेहरे में उदासी है, चेहरे से गम झलक रहा है, बेचैनी झलक रही है, लेकिन इधर चेहरे से मीठी मंद मुस्कान है, शीतलता बिखेर रहे हैं, शांति खुशी बिखेर रही है चेहरे से, कौन सा वाला पसंद करोगे? ये वाला पसंद करोगे हाँ? तो सिर्फ सुंदरता नहीं, सिर्फ स्वस्थता नहीं, सिर्फ फिटनेस नहीं, लेकिन खुशी भी हो हाँ? वो अंदर में होगी तभी तो चेहरे से झलकेगी ना, अंदर शांति होगी तभी तो चेहरे से झलकेगी ना। तो मतलब मन की खुशी चाहिए हमें, मन की शांति चाहिए हमें, मन की शक्ति चाहिए। चेहरे से शक्ति भी पता चलती है, नहीं पता चलती है हाँ? चेहरा देख के बोलते बाप रे तो कितना घबराया हुआ लग रहा है, कितना कमजोर है ये, और एक चेहरा देखो बड़ा ही जबरदस्त है ये तो, कोई भी परिस्थिति आ जाए ये हिलने वाला नहीं है। तो चेहरे से ही सब पता चल जाता है ना। तो ये चेहरे में कब आता है? जब वो अंदर सोच में होता है, अंदर सोच में खुशी है, अंदर सोच में शक्ति है, अंदर सोच में शांति है, अंदर सोच में शीतलता है, तब वो चेहरे से बाहर आता है। तो देख लीजिए लक्ष्मी नारायण को क्या झलक रहा है चेहरे से हाँ? उनके शरीर को देखो, परफेक्ट है। आज भी किसी मंदिर में जब देवी देवताओं की स्थापना करते हैं तो कौन सी मूर्ति की स्थापना करते, खंडित या अखंडित? हाँ, खंडित मूर्ति की कभी भी स्थापना नहीं करते हैं। हाँ, मूर्तिकार मूर्ति बनाता है मूर्ति को मंदिर में स्थापित करने के लिए, लेकिन किसी भी कारण से अगर उसका खंडन हो गया है तो उसको मंदिर में स्थान नहीं मिलता है, उसको म्यूजियम में स्थान मिलता है। मंदिर में तो अखंडित मूर्ति को, मतलब लक्ष्मी नारायण माना ही 100% उनके पास हेल्थ, कोई अंग भंग नहीं, कोई अंग में बीमारी नहीं, कुछ नहीं। ऐसे ही अगर लक्ष्मी नारायण कोई मंदिर में देवी देवता हो लेकिन चेहरे से वो हर्षित मुक्ता हो ही नहीं। देखिए कभी देवी देवताओं के चित्र, बहुत गुस्से वाले, बहुत बेचैनी बिखेरने वाले नहीं। उनके चेहरे कैसे होते हैं? हर्षित मुख, कि जिस हर्ष को देखकर, जिस चेहरे को देखकर मनुष्य कितने भी गम में क्यों नहीं हो, कितनी भी अशांति में क्यों नहीं हो, लेकिन पल भर का दर्शन करके वो पल भर के लिए अपने गम को भूल जाता है, वो अपनी अशांति को भूल जाता है और पल भर के लिए वो शांति की अनुभूति, खुशी की अनुभूति, शक्ति की अनुभूति कर लेता है। है अनुभव आप सभी का? हाँ, है ऐसा अनुभव? क्यों? वो जबकि हमारे जैसे लिविंग नहीं है, मूर्तियां हैं, लेकिन मात्र उन मूर्तियों को भी देखकर वो वाइब्रेशन हम कैच कर रहे हैं, जो वाइब्रेशन यहां तक पहुंचकर मेरे को भी, जैसे बताया ना, जिस प्रकार की फ्रिक्वेंसी को हम कनेक्ट करेंगे, ट्यूनिंग करेंगे, उसी प्रकार का गाना सुनने में आएगा ना। तो चूंकि वो हर्षित मुख है और उसके साथ हम ट्यूनिंग कर लेते हैं, तो हमारे अंदर भी पल भर के लिए वो हर्ष, वो खुशी, वो शांति आ जाती है। और क्या है इनमें? हाँ, एक व्यक्ति है, बहुत गरीब है, धन धान्य की कमी है, और एक व्यक्ति है धन धान्य से भरपूर है, रिच है। किसको पसंद करोगे? रिच वाले को, अमीर वाले को? जीवन हो तो कैसा, ऐसा या ऐसा, संपूर्णता वाला या अभाव वाला? हाँ, क्या कहोगे? संपन्नता हो ना, देख लीजिए लक्ष्मी नारायण को, है संपन्नता, दिखती है, क्या तो आभूषण पहने हैं, क्या तो रत्न जड़ित ताज है, क्या तो वस्त्र पहने हैं। ये बिना संपन्नता के हो सकता है? नहीं, संपन्न है, धन धान्य से संपन्न है। एक परिवार है, दिखने में सुंदर है, स्वस्थ है, फिट है, लेकिन रिश्तों में रोज तकरार होती रहती है। और एक परिवार है, रिश्तों में हार्मनी है, आपस में तालमेल है, एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग है, सहयोग है। किसको पसंद करोगे? किसको पसंद करोगे? जहां तकरार होती है वहां, या जहां तालमेल है वहां? हाँ, जहां तालमेल के साथ परिवार आगे बढ़ रहा है, देख लीजिए लक्ष्मी नारायण को। लक्ष्मी नारायण की झांकी हमेशा युगल रूप में दिखाते हैं। लक्ष्मी अलग, नारायण अलग, ऐसा कभी नहीं दिखाते। अगर आपने अलग लक्ष्मी देखी होगी ना, तो उस अलग लक्ष्मी को लक्ष्मी नहीं बोलते हैं, उसको महालक्ष्मी बोलते हैं। और उसको चार हाथ होते हैं, और चार हाथ दिखाकर यही बताया है, पार्टनर साथ में है। ऐसे ही नारायण भी आपने कभी अकेला नहीं देखा होगा, अगर देखा होगा तो उसको विष्णु कहते हैं, चार हाथ वाला। और अगेन उसका मतलब यही है कि पार्टनर साथ में है। तो हमेशा पार्टनर साथ में रहे, हाँ, मिले हुए रहे, ये तो तभी है जब तकरार न हो, नहीं, टकराव न हो, दिल मिले हुए हो। तो ये लक्ष्मी नारायण की युगल झांकी दिखाकर यही बताया जा रहा है, इनके जीवन में, परिवार में क्या है? एकता है, हार्मनी है, तालमेल है। अब जिस परिवार के मुखिया में इतनी हार्मनी हो, इतने दिल जुड़े हुए हो, तो उस परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे वो कैसे होंगे? वो क्या सीखेंगे? वही सीखेंगे ना। आज अगर माँ बाप बच्चों को शब्द रूप में तो भले अच्छी शिक्षा देते हो, कभी झगड़ रहे हैं उनको बोलो बेटा ऐसे झगड़ते नहीं है, कहेगा रखो पापा अपने पास मैं भी देखता हूँ आप मम्मी से कैसे करते हो, रखो मम्मी अपने पास मैं देखता हूँ आप पापा से कैसे करती हो। तो शब्दों में हम क्या सिखा रहे हैं उसको बच्चा नहीं पकड़ता है, बच्चा किसको पकड़ता है, व्यवहार में वो क्या देख रहा है उसको पकड़ता है। तभी बोलते हैं वैल्यूज आर नॉट टॉट, वैल्यूज आर कॉट। सिखाने से कुछ नहीं होने वाला है, आप रोज सिखा रहे बच्चों को बच्चे झगड़ना नहीं चाहिए, बच्चे नफरत नहीं करनी चाहिए, लेकिन बच्चा अगर माँ बाप जो उसके लिए आदर्श है, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण कौन है उनके लिए माँ बाप है, लेकिन उनको वो अगर ऐसा देख रहा है तो शब्दों में भले माँ बाप कुछ भी बोले लेकिन बच्चा क्या करेगा जो माँ बाप को देख रहा है। तो अब ये लक्ष्मी नारायण जिनके दिल इतने जुड़े हुए जो सदा साथ है, तो उसके बच्चे क्या सीखेंगे, वही यूनिटी सीखेंगे, वही हार्मनी सीखेंगे, वही दिलों में प्रेम एक दूसरे के लिए रखना सीखेंगे। मतलब लक्ष्मी नारायण को परिवार का सुख भी है, यही तो चाहते हैं ना हम, हमारे रिश्ते बड़े सुमधुर हो। और पांचवी बात और क्या चाहते हैं हम, हाँ हमारा अपना खुद का मकान हो, है ना, ऐसा चाहते हैं ना सभी। और वो मकान ऐसी जगह पर हो जहां पर नेचुरल कैलमिटीज ज्यादा परेशान नहीं करती हो, नहीं आजकल बाढ़ भूकंप, तो हम क्या चाहेंगे हमारा घर थोड़ा सेफ हो, ऐसी जगह पर हो, और ऐसी जगह पर हो जहां सनलाइट सूर्य का प्रकाश अच्छा आता हो, जहां हवा अच्छी आती हो, ऐसी जगह पर हो जहां पर बिजली की व्यवस्था पानी की व्यवस्था हो सके तो 24 घंटे उपलब्ध हो, और इतना ही क्यों, फोन की व्यवस्था हो, टीवी की हो, आजकल इंटरनेट है उसकी हो, मतलब विज्ञान ने जो सुख सुविधा के साधन दिए हैं उन सब से मेरा घर भरा पूरा हो। और घर के बाहर बाग बगीचे हो, द्वार पर गाड़ियां खड़ी हो, सेवा में नौकर चाकर हाजिर हो, प्रकृति के तरफ से कोई भी आपदा न आती हो, हम ये चाहते हैं। सारी मेहनत हम जो सवेरे से रात तक करते हैं, ये जो एक एक करके मैंने बातें बताई, इसी में मेरा टाइम जा रहा है ना, इसी में मेरी सारी सोच लगी हुई है ना। अब लक्ष्मी नारायण को देख लो ये सब है या नहीं, लक्ष्मी नारायण को कहाँ का निवासी बताते हैं, स्वर्ग का, पैराडाइस का, वैकुंठ का। और उस पैराडाइज का क्या वर्णन है, उस स्वर्ग का क्या वर्णन है, हरेक के बड़े बड़े महल होंगे, सोने चांदी के, हीरे रत्नों से जड़ित, और वो महल माना महल, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के कारण क्या हो रहा है आजकल, प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती है, प्रॉपर हवा नहीं होती है, और सट सट के पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है ना, एक के बाद दूसरा घर, दूसरे के बाद तीसरा घर, तो जिसका घर बिल्कुल कोने पे उसको तो मिल जाएगा एक साइड से, बाकी अंदर वालों को मिलता ही नहीं है। लेकिन वहां पे सतयुग में तो महल होंगे और मल्टी स्टोरीड भी नहीं होंगे और सट सट के भी नहीं होंगे, खुले जहाँ एक महल और दूसरे महल के बीच में काफी दूरी होगी, तो बहुत अच्छी हवा, बहुत अच्छा प्रकाश, रत्नों से जड़ित है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, वो प्रकाश क्या होगा, और बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा? चमकदार चीज के ऊपर सूर्य का प्रकाश बढ़े, क्या होता है, और प्रकाश हो जाता है ना ज्यादा। तो प्रकाश ही प्रकाश होगा, और महलों के महल कहाँ बसे होंगे, नदियों के किनारे पर, मीठी नदियों के। तो पानी की व्यवस्था हो गई अपने आप, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। महलों के पास में ही बाहर ही पुष्पक विमान खड़े होंगे, हो गए गाड़ियां आपके लिए। और महल के बाहर बाग बगीचे, सिर्फ महल के बाहर तो क्या, सारी ही धरती हरियाली का गलीचा ओढ़े हुए है, सुंदर बाग बगीचे फलों फलों से लदे हुए हैं। और सेवा में देखते हैं ना, राजाओं के सेवा में कितने आगे पीछे होते हैं, होते हैं नहीं होते हैं, तो वो भी है। तो जिसके लिए हम आज मेहनत कर रहे हैं, तो जिसके लिए आज हम मेहनत कर रहे हैं वही तो लक्ष्मी नारायण में है। और इसीलिए जो कहा कि नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बन जाए, मतलब ये पांचों प्रकार के सुखों से जीवन संपन्न हो जाए। तन का सुख जिसमें सुंदरता, स्वस्थता और फिटनेस, मन का सुख जिसमें हर्ष, खुशी, शांति, शक्ति, धन का सुख जो कहा कि हर प्रकार का वैभव है, रिश्तों का सुख जो दिखाया दोनों की युगल झांकी दिखाई जाती है, और प्रकृति का सुख जो कहा कि पैराडाइज में रहने वाले हैं, जो सब प्रकार का सुख है। और इसलिए हमें पसंद आता है कि हम भी बने तो इनके जैसे बने, क्योंकि सारी रात दिन मेहनत तो इसी के लिए है ना। लेकिन ऐसा बनने के लिए क्या कहा, ऐसी करनी करनी पड़ेगी। हाँ, नर से नारायण बन जाए, नारी से श्री लक्ष्मी बन जाए, मतलब आज जो अभाव वाला दिन मना स्थिति है हमारी, हर लेवल पर सुंदरता अगर होगी भी तो कोई 100% नहीं होगी, स्वस्थ होंगे भी लेकिन 100% नहीं होंगे, फिटनेस होगे भी तो भी कोई 100% नहीं, मतलब कुछ ना कुछ मिसिंग जरूर होता है। किसी को तन का सुख है तो मन का नहीं है, मन का है तो धन का नहीं है, होता है ना कहीं ना कहीं। आज के जीवन में कुछ ना कुछ ये जो पांच प्रकार के सुख है मिस है, और इस कारण से जो एक सुख है दूसरे अन्य सुखों के अभाव के कारण उस सुख को भी अच्छी से एंजॉय नहीं कर पा रहे। है ये सच बात, है ये सच बात कि भले एक प्रकार का सुख क्यों न है, लेकिन फिर भी जो दूसरा सुख है वो एक के अभाव के सोच में उसको भी हम, उसका भी हम आनंद नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि दूसरा सुख कैसे आए उसकी चिंता लगी पड़ी है, और साथ साथ में डर लगा पड़ा है कहीं ये भी सुख न चला जाए, है ना। तो वो करनी, परमात्मा आके वो करनी सिखाते हैं, जो सत्य नारायण की कथा, तो वो परमात्मा सत्य जिसके चित्त में सत्य है, आनंद है, वो ही ऐसी करनी सिखाता है कि नर से तुम नारायण कैसे बनो। तो ये जीवन का लक्ष्य है, जिसने पूछा कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य है नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बन जाए और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बन जाए। और वो जो ऐसी करनी है उसके लिए परमात्मा के ज्ञान को जीवन में धारण करना पड़ेगा। महाभारत के अंदर एक सीन आता है ना, एक तरफ दुर्योधन, एक तरफ अर्जुन। श्री कृष्ण के पास जाते हैं ना दोनों, युद्ध की घोषणा हो चुकी है तो मदद के लिए दोनों जाते हैं। श्री कृष्ण कहता है एक तरफ मेरी सेना है और एक तरफ मैं हूं, जिसको जो चाहिए वो ले लो। तो दुर्योधन क्या चूज करता है, दुर्योधन क्या लेता है, हाँ सेना को लेता है। क्यों? क्योंकि ये भी कंडीशन थी कि श्री कृष्ण युद्ध करने वाला नहीं है। तो दुर्योधन सोचता है इसने तो युद्ध करना ही नहीं है और मैंने तो विजय पानी है युद्ध में, तो इसका साथ लेके मेरे को क्या फायदा, युद्ध में विजय पाने के लिए मुझे सेना चाहिए, वो सेना ले लेता है। और अर्जुन क्या लेता है, मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। आप साथ होंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हुआ क्या, यही हुआ ना, जिसने सेना ली वो विजयी बना या जिसने श्री कृष्ण का साथ लिया वो विजयी बना? कौन विजयी बना था इस युद्ध में, हाँ अर्जुन या दुर्योधन? अर्जुन, क्योंकि उसने सेना की परवाह नहीं की, उसको परवाह थी कि मुझे इनका साथ चाहिए। उसको भी पता था कि ये युद्ध करने वाले नहीं है मेरे साथ, परंतु साथ एक बहुत बड़ी चीज होती है। किसका साथ है, कहानी के अनुसार श्री कृष्ण को परमात्मा के रूप में दिखाया है, तो परमात्मा का साथ जो सर्वशक्तिवान है उसके सामने ये सेना क्या चीज है। इसलिए उसने उस सर्वशक्तिवान का साथ लिया। और क्या दिखाते हैं, युद्ध का मैदान है, कुरुक्षेत्र है, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी है, युद्ध चल रहा है और अचानक में युद्ध थम जाता है और श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान सुना रहे हैं। वही गीता है ना जो हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते, वो वही है ना कि युद्ध के मैदान में युद्ध कुछ समय के लिए थम गया है और श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान सुना रहा है। वो अर्जुन उस ज्ञान को अर्जित करता है और उस ज्ञान अर्जन के बाद, मतलब वो जो श्री कृष्ण उसको टिप्स देता है, इस युद्ध में विजय पानी है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वही ज्ञान है, वो टिप्स देता है और वो टिप्स को ध्यान में रखकर वो फिर युद्ध लड़ता है और आखिर विजय उसकी हो जाती है। तो ये क्या है, हा? उस दिन भी प्रश्न उत्तर के सेशन में जो किसी ने पूछा था, ये रावण क्या है, क्या सच्ची में कोई व्यक्ति है, हा? तो भ्राता जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया था, रावण कहो चाहे जो भी है पात्र, जो कहा था कि महाभारत अगर किसी ने पढ़ा हो तो उसके अंत में लिखा है ये सारे गुणवाचक नाम है, ये जो पात्र बनाए गए हैं सारे गुणवाचक है। तो ये जो स्टोरी है ये किसकी है, ये हमारी है, सारे संसार के मनुष्य आत्माएं, जो एक दुर्योधन का साइड कहेंगे और एक साइड अर्जुन है एक साइड दुर्योधन है, ऐसा ही है ना। तो अर्जुन माना जो ज्ञान का अर्जन करने के लिए रेडी है। तो देखो, आप सबको निमंत्रण मिला, मिला तो बहुतों को होगा, लेकिन आपको मिला, आपने स्वीकार किया और आप आए। हर दिन बड़ी तन्मयता से होकर यहां बैठते हैं, सुनते हैं, क्या कर रहे हैं? ज्ञान को अर्जन कर रहे हैं। कौन सा ज्ञान सुना रहे हम? कोई संतों महात्माओं का ज्ञान सुना रहे? कोई शास्त्रों का ज्ञान सुना रहे? नहीं, जो स्वयं पिता परमात्मा ने ज्ञान दिया है वो हम सुन रहे हैं, उसको हम अर्जित कर रहे हैं। तो हम सब कौन हैं? अर्जुन, जरा सोचिए, श्री कृष्ण सिर्फ एक व्यक्ति को ही ज्ञान सुनाएगा क्या? तो कहानी एक रिप्रेजेंटेशन है। हम वो सब अर्जुन हैं जो भगवान के ज्ञान सुनने के लिए रेडी हैं। और जो दूसरा पक्ष बताया कि दुर्योधन जिसने मांगी सेना, तो सेना क्या है हमारे लिए? हमारे पास जो धन साधन है, जो पावर पोजीशन है, जो स्किल है, जो दुनियावी टैलेंट है, जो कॉन्टेक्ट्स है, जो रिलेशंस है, जो भी है, हमने उसको थोड़े समय के लिए क्या कर दिया? वहां रख दिया ना, रख दिया ना, जहां से आए हो यहां पे आ गए ना, तो ये युद्ध थम गया ना थोड़ी देर के लिए, युद्ध थम गया ना थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जहां हम रहते हैं वो क्या है? वो कर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र माना क्या? कर्म क्षेत्र। और उस कुरुक्षेत्र में बताया युद्ध, तो कंपैरिजन था किसका? कि हमारे कर्म क्षेत्र में ढेर सारी चैलेंजेस हैं, ढेर सारी परिस्थितियां हैं, ढेर सारे प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस, ढेर सारी बातें आती रहती है। ये है चैलेंजेस, ये युद्ध, कि उन सब चैलेंजेस को हम उस साइड छोड़ के आ गए और आके परमात्मा का ज्ञान सुन रहे हैं कि उस ज्ञान को मैं कैसे अप्लाई करके इन चैलेंजेस को पार करके विजयी बन जाऊं। विजयी बन जाऊं मना, चैलेंजेस कैसे पार करूं? बड़े ही शांत चित्त के साथ, चाहे चैलेंजेस कितनी भी क्यों नहीं हो, परिस्थिति हिलाने वाली कितनी भी क्यों नहीं हो, परिस्थिति दुख देने वाली कितनी भी क्यों नहीं हो, लेकिन ये जो मुझे ज्ञान की टिप्स मिली है, ये जो मुझे उस परमात्मा का साथ मिला है जिससे कनेक्ट होके मैं अपने अंदर वो शक्ति, वो प्यार, वो खुशी भर रहा हूं, तो उसी खुशी के साथ, उसी शक्ति के साथ, उसी प्यार के साथ चैलेंजेस को डील करूंगा। तो विजय है ना हमारी? परिस्थितियों के बीच में भी मैं खुश हूं, परिस्थितियों के बीच में भी मैं शांत हूं। परिस्थितियां तोड़ने वाली है मन को, हिला देने वाली, फिर भी मैं स्टेबल हूं। इसको ही तो विजय कहते हैं। और किसको कहते हैं विजय? ऐसा हो सकता है कि परिस्थितियां बिल्कुल नहीं आए लाइफ में, हो ही नहीं सकता, लेकिन उनके बीच में मैं क्या करूं? अपने मन को स्टेबल रखूं, अपने मन को शांत रखूं, शांत होकर उनको हैंडल करूं। क्योंकि परिस्थितियां वैसे बड़ी होती नहीं है, परिस्थितियां, गीत सुन रहे ना आप, मुश्किलों से कह दो, हाँ क्या कह दो मुश्किलों से? मेरा खुदा बड़ा है, तो मैंने खुदा का साथ पकड़ लिया, अब कोई भी परिस्थिति मेरे लिए बड़ी है क्या? नहीं है। परिस्थिति बड़ी कब लगती है? जब हम कमजोर होते हैं। अगर मैं शक्तिशाली हूं तो परिस्थिति बड़ी नहीं। एक विद्यार्थी देखो जिसने बहुत अच्छी स्टडी कर ली है, सिलेबस के अनुसार, जिस अनुसार पेपर आने वाला है उस सब का अध्ययन कर लिया है, उसको एग्जाम के दिन फीवर होगा, उसको एग्जाम के दिन पेट में दर्द होगा। लेकिन जो बच्चा डर गया है, पढ़ाई नहीं हुई है, क्या लिखूंगा जाके, उस डर में क्या हो जाता है, उसको बुखार आ जाता है, पेट दर्द हो जाता है। तो एग्जाम कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन बच्चा कमजोर है, पढ़ाई नहीं की, इसलिए बड़ी चीज लग गई। लेकिन जिसने पूरा अध्ययन कर लिया था, उसके लिए एग्जाम तो खेल ही था कि कब एग्जाम आए, कब मैं लिखूं और मैं पढ़ाई से फुर्सत होके दोस्तों के साथ थोड़ा एक चेंज माहौल, एक चेंज रूटीन करूं, वही पढ़ के थोड़ा सा लगता है कि मन को थोड़ा रिलैक्स छोड़ूं अभी, ऐसे ही होता है ना। तो परिस्थितियां बड़ी नहीं है, अगर इधर शांति भर ली ना, उससे कनेक्शन जोड़ के इधर शांति भर ली, शक्ति भर ली, कोई भी परिस्थिति आए मेरे लिए वो बड़ी नहीं है। तो हम सब यहां उस कर्म क्षेत्र के चैलेंजेस को, वहां जो हमारे धन साधन पावर पोजीशन, वो सब को वहां रख के हम आके एकदम विद्यार्थी बन गए हैं, नहीं? आप चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी पोजीशन वाले होंगे, हाँ, आपके सामने तो हम बहुत छोटे हैं, उतनी बड़ी पोजीशन तो दुनिया के हिसाब से हमारी कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ज्ञान मिल रहा है, इसलिए ज्ञान अर्जन की दृष्टि से वो सब कुछ भुला दिया आपने कि हम कितने बड़े पोजीशन वाले हैं, भुलाया या नहीं भुलाया, और बैठ गए हैं। तो हम ही वो अर्जुन हैं जिसने उस परमात्मा का साथ लिया है, और उस परमात्मा का साथ लेकर उसकी वो एनर्जी, वो शक्ति, वो प्यार भर रहे हैं, उसकी ज्ञान की टिप्स को अपने अंदर भर रहे हैं, ताकि इन टिप्स को प्रैक्टिकल व्यवहार में यूज करते हुए जब कर्म क्षेत्र में जाएंगे, जीवन आसान लगेगा। जीवन वो ही रहेगा, लेकिन अब जीवन बोझ नहीं लगेगा, अब जीवन हल्का लगेगा, जीवन एक खेल लगेगा। वही परिस्थितियां, वही परिवार वाले, वही जो थोड़ी अनबन थी वो वैसा ही करेंगे गुस्सा, लेकिन हमने यहां से सीख लिया है मैं शांत स्वरूप हूं, तो वो सामने से करेंगे, लेकिन मैं क्या करूंगी, मैं आत्मा क्या हूं, शांत स्वरूप। ये आत्मा भी ओरिजिनली शांत स्वरूप है, लेकिन ये अभी तक भूली हुई है, तो मैं उसको वो वाइब्रेशन दूंगी, वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। तो बदलना सिचुएशन को हमारे हाथ में है, पॉजिटिव नेगेटिव भी तो हम ही बना रहे हैं ना सिचुएशंस को, कहते हैं ना उसने गुस्सा कर दिया ना उस दिन उसके साथ, इसलिए थोड़ी अभी वो हो गई है। कितने प्यार से हम लोग आपस में मिलते थे, पर उस दिन मैंने गुस्से में उसको क्या बोल दिया, अब वो मेरी तरफ देखता भी नहीं है, ऐसे ही बोलते हैं ना हम। तो बिगाड़ी हमने किससे, गुस्सा माना मन में गुस्सा था वो बाहर आया, अब अगर मन में अच्छा होगा तो वो भी तो बाहर आएगा ना। तो चाहे नेगेटिव चेंज चाहे पॉजिटिव चेंज, वो हमारे हाथ में है। और आज दिन तक चूंकि प्रॉपर समझ नहीं थी कि मेरे अंदर वो खुशी, वो शांति, वो सब कुछ है, तो हम उसको यूज नहीं कर रहे थे। हमने सोचा सिर्फ मेरे पास गुस्सा ही है, मेरे पास सिर्फ चिंता है, मेरे पास सिर्फ डर है। इसलिए देखो कई बार हम अपनों के लिए चिंता करते रहते और सोचते, चिंता करना माना हम उनके वेल विशर हैं, ऐसे ही सोचते हैं ना, पर वेल विशर है हम के? है हम उनके वेलविशर चिंता करके? नहीं, क्योंकि जितना चिंता में हम उल्टा निगेटिव सोचते हैं ना, चिंता में कहीं ऐसा ना हो जाए इसके साथ, कहीं वो ना हो जाए उसके साथ, तो हमारे संकल्प ही तो परिस्थितियों को सामने लाते हैं। तो बोला कि मैं उसका वेलविशर हूं इसलिए चिंता कर रहा हूं, पर कर क्या रहा हूं, और ही परिस्थितियों को सामने ला रहा हूं, पर वो सब क्यों कर रहे थे? क्योंकि पूरी समझ नहीं थी। भाव बहुत अच्छा था, लेकिन ये नहीं पता था मन की साइकोलॉजी कि हमारा मन जैसा सोचता है वैसी परिस्थितियों को आकर्षित कर लेता है। और इसलिए अब चाहे मैं किसके लिए वेल विशर भी मैं समझूं, ये मेरे अपने हैं, चिंता नहीं, बल्कि उनके लिए हमेशा शुभ शुभ सोचे। परिस्थिति आई है लेकिन फिर भी कहीं पर भी आशा की किरण नहीं दिख रही है, फिर भी मेरे अंदर आशा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा फलाने के साथ। कुछ भी जो हम बोलते ना, पता नहीं क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल भी नहीं सोचे, जो कुछ है अच्छा हो जाएगा। शुभ शुभ बोलो तो अशुभ भी शुभ में परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि वाइब्रेशन यूनिवर्स के अंदर आप सोच रहे, हम सोच रहे, सब वाइब्रेशंस इस वातावरण में हैं। और अगर मैं सोचती हूँ कहीं कुछ ना हो जाए, माना उसके साथ ट्यूनिंग हो गई मेरी, और ट्यूनिंग होगी तो हो जाएगा जीवन में। इसीलिए परमात्मा क्यों कहते हैं शुभ शुभ सोचो, क्यों कहते हैं मेरे को याद करो, मतलब मेरे से कनेक्ट करो, क्योंकि उसकी एनर्जी कैसी है, किसका सागर है वो, शांति का सागर, प्यार का सागर। यही महिमा करते थे ना उसकी, हाँ, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे है, ये गाते थे ना। परमात्मा कहते तुम मेरे बच्चे हो, बूंद के लिए प्यासे क्यों बनते हो, तुम मेरे से कनेक्ट होके पूरी गागर भर लो ना, एक बूंद के लिए तरस रहे हो, राजा का बच्चा और 5 रुपए के लिए तरस जाए, नहीं, शांति के सागर, प्यार के सागर, खुशियों के सागर के हम बच्चे। परंतु वो खुशी वो शांति पर अधिकार मेरा तब जब बाप बच्चा बाप के साथ कनेक्शन तो रखे ना। आपके पास भरपूर प्रॉपर्टी है लेकिन बेटा आपके कहने में ही नहीं है, आपके बिल्कुल अगेंस्ट में है, आपकी दिल होगी मैं इसको दूं कुछ? आप दूसरों को मदद के लिए दान करोगे पर उसको क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसे देता रहूंगा और ट्रैक से बाहर होगा, ऐसे ही होता है ना। तो परमात्मा तो ऐसे नहीं बोलता है, लेकिन परमात्मा वो टेक्निक बता रहा है कि अगर तुम मेरे साथ कनेक्ट होगे तो वो वाइब्रेशन से वो वाइब्रेशन मिलेगा तो तुम कैच कर पाओगे। और इसीलिए उसके साथ रिश्ता रखना है। हमने गाया भले उसके लिए, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव, गाया जरूर, लेकिन कोई भी एक रिलेशन भी उसके साथ बनाया नहीं, निभाया नहीं। कैसे पता चलता है कि हमने उसका रिलेशन उसके साथ नहीं निभाया है? कैसे पता चलता है कि हम नहीं निभा रहे हैं? वो ऐसे पता चलता है, आरती पूजा के समय तो हमने गाया जरूर श्लोक, लेकिन वहां की वो दहली क्रॉस करके जब कर्म क्षेत्र पर उतरे तो जब माँ की जरूरत पड़ी तो वो वाली माँ तो याद ही नहीं आई थी, जब पिता की जरूरत पड़ी तो वो पिता की तो याद ही नहीं आई थी, जब बंधु की जरूरत पड़ी थी तो वो बंधु की तो जरूरत ही नहीं है, याद ही नहीं आई थी। तब कहते रिश्ता माना ही क्या, आप मेरे लिए सोच रहे हो, मैं आपके लिए सोच रही हूं, तभी रिश्ता बनता है ना। इसीलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि जैसे वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन किसको कहते हैं, एक खिड़की से हवा आए और दूसरी खिड़की से जाए, उस खिड़की से आए इस माना लेन देन एक्सचेंज होता रहे। तो जीवन में भी रिश्तों की सुंदरता तब बढ़ती है जब आपस में एक्सचेंज चलता रहता है, और जब आपस में एक्सचेंज चलता रहता है वही तो याद आते हैं, और कौन याद आता है, जिनके साथ हमारी एक्सचेंज नहीं होती है ज्यादा, तो हम क्या कहते हैं? वैसे वो मेरे लगते तो है रिश्ते में मामा, पर हमारा ऐसा कोई उनके साथ इतना है नहीं। बोलते हैं नहीं बोलते ऐसे? लगते हैं, क्योंकि मेरी माँ का वो भाई है तो मामा लगता जरूर है वो, परंतु हम लोगों का इतना उनके साथ कुछ नहीं, लेन देन नहीं ना, आपस में एक्सचेंज नहीं है ना, न वो हमारे लिए सोचते ना हम उनके लिए सोचते हैं, तो न हम उनके लिए वाइब्रेशन भेजते ना वो हमारे लिए वाइब्रेशन, और अगर भेजते भी होंगे तो निगेटिव। और मामा तो है या चाचा जो भी है, पर क्यों नहीं है रिश्ता? रिश्ता होते हुए भी, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते तो हम भी उनके लिए क्या करते हैं? अच्छा नहीं सोचते। और इसलिए भले मन में सबसे ज्यादा वो ही बसा होगा, लेकिन सामने हम मिलना नहीं चाहेंगे, हम कहेंगे मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं आना तुम, लेकिन मन में तो वही बसा होगा सारा दिन, भाई होकर मामा होकर ऐसा करता है ये मेरे साथ, तो निगेटिव एक्सचेंज हो रहा है। और रिश्ते बनेंगे जब एक्सचेंज पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो। तो वो परमात्मा के साथ मेरा इतना एक्सचेंज है कि सिर्फ मंदिर में 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जितना बैठा सिर्फ उतनी देर तक, तो फिर उधर से आएगा कैसे? इधर से जाए तो उधर से आए ना, मैं इधर फोन करूं तब तो सामने वाला भी फोन करे ना मुझे। इसीलिए यहां पे जो राजयोग मेडिटेशन सिखाया जा रहा है, ये क्या है राजयोग मेडिटेशन? आप उसके साथ बातें करो, वो रिलेशन के साथ, माता पिता और बच्चे के रिलेशन में, भाई भाई के रिलेशन में, साजन सजनी के रिलेशन में, दोस्त के रिलेशन में, जो भी रिलेशन है उस रिलेशन में उससे बातें करते रहो। सुबह से लेकर रात तक मेरा सोच उसके प्रति दौड़ता रहे, सुबह उठे तो भी गुड मॉर्निंग शिव बाबा, रात को सोए तो भी गुड नाइट शिव बाबा, और दिन भर में जो भी कर रहे बाबा देखो आज मुझे ये करना है, आपको मेरे साथ रहना है, फलानी चीज का मुझे डिसीजन लेना है, बताओ इसका मैं क्या डिसीजन लूं, जैसे करते हैं ना हम माँ बाप के साथ भाई बहन, बिल्कुल सेम वैसा। ये है राजयोग, कि उसके साथ मेरी एक्सचेंज बनी रहे, तो जब मैं उसको अपनी बात बताऊंगी तभी तो वहां से आंसर आएगा। और इसीलिए कहा कि पहले अपने को भी, क्योंकि उसके साथ फ्रीक्वेंसी मिलानी है ना, तो आत्मा समझकर वो सब करना है। तो बाहर में भला एक्टिविटी शरीर के द्वारा कर रहे, लेकिन पहले तो सोच होती है ना इधर, तो सोच में मैं आत्मा हूं, उस पिता से बात कर रही हूं, सोच उसके साथ जुड़ी रहे मेरी। तो इसलिए कहा अपने आप को शांत स्वरूप होकर उसके साथ कनेक्ट करो, क्योंकि कनेक्शन के लिए वो फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए ना, नहीं तो मैच ही नहीं हो पाती है। और जब मैच नहीं होती है और हम उसको बहुत बोलते हैं प्रभु मेरे जीवन में ये कर दो ये कर दो, और नहीं होता है तो फिर क्या होता है? वो तो कुछ सुनता ही नहीं है, मैचिंग हुआ ही नहीं, वहां तक आपकी आवाज गई नहीं ना अभी तक, आपकी सोच वहां तक पहुंची ही नहीं है अभी तक। तो ये है राजयोग जो परमात्मा सिखाते हैं, कि एक मन की लेवल पर उसके साथ कनेक्शन बना रहे, जो अभी ज्ञान मिला इतने दिन में, लेकिन ये ज्ञान भी रोज रोज उसका सुनते रहें, जिसको ही कहते सत्संग। पहले भी कहा ना, इंसान संग किए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि सामाजिक प्राणी, उसको संग चाहिए। और दूसरा, संग का रंग लगेगा जरूर, और इसलिए संग करना ही है, तो उस सत्य का संग कर ले कि जिस सत्य का ऐसा संग लगे जो जीवन पूरी संवर जाए, मेरी तो क्या, मेरे कांटेक्ट में जो भी आए उनकी भी जीवन संवर जाए। तो ये है सत्संग। तो एक सत्संग डायरेक्ट कनेक्ट होके उसकी एनर्जी, वो शक्ति, वो प्यार भरे, दूसरा सत्संग उसने जो ज्ञान सुनाया है उस ज्ञान का प्रतिदिन श्रवण करे, क्योंकि ज्ञान की टिप्स मिलती जाएगी तभी तो चैलेंजेस को हम फेस करते जाएंगे ना उस आधार से। इसीलिए देखो ऐसा नहीं था कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ एक दिन पूरा ज्ञान दिया था, कितने अध्याय बताते हैं, 18, माना बीच बीच में बार बार युद्ध फ्रीज हो जाता था ना, और फिर वो सुनता जाता था और सुनने के बाद फिर से युद्ध में लग जाता था। तो ऐसे यहां पर तो आप वहां की सब रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां छोड़ के यहां आ गए हो 3-4-5 दिन के लिए, लेकिन अब जब जाओगे ना तो कम से कम आधा घंटा के लिए हर दिन वो युद्ध वाले सीन को रोक देना और परमात्मा के ज्ञान का श्रवण करना, जिसको हम मुरली कहते हैं। क्यों मुरली कहते हैं, तो परमात्मा के महावाक्य ज्ञान पर मुरली क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि मुरली तो एक बजाने का साधन होता है ना, वो इंस्ट्रूमेंट है ना संगीत का, तो इसको मुरली क्यों कहते हैं हम परमात्मा के महावाक्यों को, क्योंकि जब मुरली की तान बजती है ना तो मन को बड़ा अच्छा लगता है ना, जब संगीत कानों में पड़ता है मन को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही जब ये भगवान का हम ज्ञान सुन रहे हैं, कोई तबला पेटी नहीं है, कोई ढोलक नहीं है, कोई हारमोनियम नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आप जब सुनते हो तो सुदबुद्ध खो जाते हो या नहीं, हाँ, तो माना मुरली जैसा ही जादू हो रहा है ना इसका भी, इसलिए इसको कहते हैं भगवान के महावाक्यों को मुरली। तो रोज आधा घंटा कम से कम, भले शुरुआत आधे घंटे से करें फिर बढ़ाएं, लेकिन कम से कम यहां से एक संकल्प करके जाना, कम से कम आधा घंटा तो मुझे अपनी जिम्मेवारियों आदि से समय निकालकर जिन सेवा केंद्रों के थ्रू यहां हम आए हैं उन सेवा केंद्रों पर जाके भगवान की मुरली रोज सुनेंगे। कर सकते हैं ऐसा संकल्प, कर सकते हैं ऐसा संकल्प, जो समझते हैं जरा हाथ तो खड़ा करें, तभी आपका यान आना सार्थक हो जाएगा। बधाई हो आपको, क्योंकि ये जो कुछ भी करेंगे इसमें फायदा मेरा अपना है, और जब मेरा अपना फायदा होगा और मेरे फायदे से अगर मेरे आसपास वाले भी फायदे में आ जा रहे हैं, जैसे आजकल वो बिजनेस करते हैं ना, वो क्या क्या बोलते हैं कि एक करेगा फिर वो दूसरे ग्राहक बनाएगा फिर उसके नीचे और ग्राहक बनेंगे तो टोटल कमीशन वहां तक पहुंचेगी ऊपर वाले तक, ऐसा ही होता है ना, पता नहीं कौन सा बिजनेस कहते हैं उसको, हाँ क्या बोलते हैं, सुनाई नहीं पड़ रहा है, नेटवर्किंग जो भी, मतलब एक ने शुरू किया उसके अंडर में कुछ आए फिर उसके अंडर में और कुछ आए फिर उसके अंडर में कुछ आए, तो सारा कमीशन कहां तक पहुंचेगा, जिसने शुरुआत की है। तो मैंने उस परमात्मा का ज्ञान सुनकर मुरली सुनकर अपने जीवन में जो जो फायदे आ रहे हैं और मेरे जीवन के फायदों की बदौलत सामने वालों को भी, क्योंकि नेचुरल है वो गुस्सा करता था मैं भी गुस्सा करती थी, अब वो गुस्सा कर रहा है लेकिन मैंने टिप्स समझ लिए, गुस्से से गुस्सा करने से कोई सिचुएशन बनने वाली नहीं है, अब मैंने सीख लिया यहाँ पर गुस्से वाले के सामने भी शांत रहना है, खुद को भी और उसको भी वो शांति की शक्ति, क्योंकि वाइब्रेट होगी ना यहां से उसको भी, ये भी शांत स्वरूप है लेकिन भूली हुई है, इसलिए वो उस संस्कार को यूज नहीं करके शांति के, जो इस देह के भान में जो हमारे तैयार हुए संस्कार उसको, कोई बात नहीं समय पर ये भी जागृत हो जाएगा इसका भी वो गुण। तो वो जब एनर्जी उसके पास जाएगी धीरे धीरे उसमें भी क्या होगा, गुस्से के साथ जब गुस्सा करते ना और बढ़ता जाता है या नहीं बढ़ता है, लेकिन एक गुस्सा कर और एक चुप रहा तो क्या होता है, गुस्सा बढ़ता है, फिर अनुभवी है ना सभी, तो सब ठीक हो जाता है धीरे धीरे। तो उसको भी वो टेक्निक आ जाएगी ना फिर। अरे भाई तुम, मुझे तो वंडर हो रहा है आप इतने गुस्से वाले सिचुएशन में भी इतने शांत कैसे रह जाते हो, जरा मुझे भी तो सिखाओ। गुस्सा कर तो लेते हैं लेकिन वो जो बेचैनी बाद में होती है ना, सच उससे मुझे छुटकारा पाना है। और आप निमित्त बन जाओगे उसको थोड़ा बताने के लिए, थोड़ा सा इशारा कर दिया, आप भी राजयोग सीख लो। वो राजयोग सीखा, उसको भी फायदा हुआ, थोड़ा कमीशन कहाँ जाएगा, थोड़ा कमीशन कहाँ जाएगा आपके पास। और कमीशन माना वो दुआएं मिलेगी, दुआएं माना क्या, वो अच्छा सोचेगा ना, अरे भला तो उस व्यक्ति का जिसने मुझे कहा कि आप भी राजयोग सीख लो, तो वो जो उसने कहा भला तो उस व्यक्ति का, भले शब्दों में नहीं बोलते हम लेकिन मन में तो सोचते ना, अरे उस, अभी जैसे आप लोग सब यहाँ आए हो इतना तो मन में तो आ रहा है ना, अच्छा हुआ बहनों ने हमें निमंत्रण दिया, कितनी अच्छी जगह पर हम आए हैं। होता है या नहीं होता है ऐसे? तो ये क्या, यही तो दुआएं हैं। और दुआएं दिन दुगुनी रात चौगुनी हमारी उन्नति करती है। तो चलिए हम उस परमात्मा के महावाक्यों को सुनने की शुरुआत इसी शिविर से शुरू करते हैं, ताकि आगे जाकर भी हम वो कर सके। तो परमात्मा के महावाक्य जिसको कहा मुरली, तो ये मुरली भी दो प्रकार की होती है हमारी, एक को कहते हैं साकार मुरली और एक को कहते हैं अव्यक्त मुरली। आपने इस यज्ञ का इतिहास भी इस दिन उस दिन सुना था कि कैसे परमात्मा ने आकर ये ज्ञान देना आरंभ किया, कैसे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को मीडियम बनाया और उनके मुखारविंद से ज्ञान सुनाया। तो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जब तक साकार में थे, उनके मुखारविंद से जो परमात्मा ने महावाक्य उच्चारे, उन महावाक्यों को कहा साकार मुरली। और क्योंकि मनुष्य की आयु तो कुछ लिमिट ही होती है ना, वो सदाकाल तो नहीं होती, वो तो आत्मा इटर्नल है, लेकिन शरीर तो एक दिन खत्म होता ही है। तो ब्रह्मा बाबा ने भी जब अपना भौतिक शरीर त्याग किया और चूंकि परमात्मा से कनेक्शन जोड़ के उस आत्मा रूपी चांद को पूनम का चांद बना लिया, आत्मा रूपी हीरा जो दागी था उसको बेदाग हीरा बना लिया। तो आप सोचो, जैसे कहा ना बेदाग हीरे में से प्रकाश हर कोने से बाहर निकलती है, और जो दागी हीरा होगा जहां जहां दाग होता है तो प्रकाश नहीं निकलता। तो जब आत्मा पूरी ही बेदाग हो जाए तो उसके अंदर का प्रकाश कहां जाएगा, हर एंगल से उसका प्रकाश बाहर आएगा। तो उस प्रकाश जो बाहर आता है उसका एक शरीर बन जाता है जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, अव्यक्त शरीर, अर्थात इन आंखों से नहीं दिखता है, इन आंखों से व्यक्त चीजें दिखती है, और वो इन आंखों से नहीं दिखता है लेकिन अनुभव की आंख से दिखता है, उसको कहते अव्यक्त। तो वो जो शरीर प्रकाश का, क्योंकि आत्मा पूरा प्रकाश बिखेर रही है तो वो प्रकाश में काया तैयार हो जाती है। तो वो प्रकाश में काया, उसके साथ अभी भी ब्रह्मा बाबा उपस्थित हैं, बैकबोन बन के इस संस्था को परमात्मा आप क्या करते हैं, उस प्रकाश में ब्रह्मा की काया में प्रवेश करके फिर दोनों मिलकर, आपको बताया होगा उस दिन की दादी गुलजार जी जो ट्रांस में जाती है, जिनका नाम हृदय मोहिनी भी है और साथ साथ में गुलजार भी नाम कहते हैं, तो गुलजार दादी के नाम से भी जाते, वो दोनों मिलकर उनके तन में आते। तो ब्रह्मा तो अव्यक्त है, तो पिता परमात्मा उस अव्यक्त ब्रह्मा के तन में आकर और फिर दादी गुलजार के तन में आकर जो ज्ञान सुनाते हैं उसको कहते हैं अव्यक्त मुरली। तो दो प्रकार की मुरलियां हैं हमारे पास, एक साकार मुरली और एक अव्यक्त मुरली। और हमारे सेवा केंद्रों पर साकार मुरली हर दिन पढ़ी जाती है और अव्यक्त मुरली सप्ताह के एक दिन, क्योंकि साकार मुरली अव्यक्त मुरली की भेंट में थोड़ी सी ज्यादा इजी होती है, क्योंकि साकार में जब ब्रह्मा बाबा थे मना भी जस्ट पधरा मणि हुई थी शिव बाबा की, तो जब शुरू शुरू में कुछ सिखाएंगे तो बहुत इजी सिखाएंगे ना, फिर बाद में डेप्थ बढ़ती जाती है तो उस डेप्थ को समझना मना और एडवांस में जाना। तो अव्यक्त मुरली माना एडवांस ज्ञान जो बहुत गुह्यता से भरा है, और वो वही समझ सकेगा जिसको पहले इजी वाला पता चल, जिसने क ख ग पढ़ लिया वही तो अक्षर को पढ़ सकता है, नाम को पढ़ सकता है ना। सिंपल से शुरू करते हैं और आगे आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये दो प्रकार की मुरलियां हैं, तो इसलिए हर रोज तो साकार मुरली, लेकिन एक दिन सप्ताह में अव्यक्त मुरली पढ़ी जाती है। तो आज हमारी शुरुआत है, इसलिए हम कौन सी मुरली पढ़ेंगे आज? साकार मुरली। और वैसे भी अव्यक्त मुरली जो है लगभग हर सेवा केंद्र पर संडे के दिन पढ़ी जाती है, और कहीं कहीं शायद कभी कोई दिन अलग भी होगा पता नहीं, लेकिन मेजॉरिटी सेंटर पे आज के दिन जो यहाँ पर हेडक्वार्टर में मुरली पढ़ी जाएगी वही हमारे विश्व के 140 सेवा केंद्रों में जो सेवा केंद्र है, और जो बताया था कि गांवों में 21,000 गांवों में गीता पाठशाला, सब जगह पर वही मुरलियां पढ़ी जाती है। तो आज के दिन भी जो हमारी वहां मुरली क्लास चल रही है कॉन्फ्रेंस हॉल में, जो मुरली पढ़ रहे हैं वही मुरली हम आपके सामने लेकर आए हैं, लेकिन वहां तो पूरी मुरली पढ़ते हैं, यहाँ पे हम जस्ट शॉर्ट में थोड़ा सा सुनाएंगे, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस क्या, उसका बैकग्राउंड भी हमको पहले बताना था, तो अभी समय फिर थोड़ा रह गया है और इसलिए हम थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे ताकि आपको एक सैंपल मिल जाए आखिर भगवान के महावाक्य कैसे होते हैं। और साथ साथ में हम सभी जानते हैं हर 10-15 किलोमीटर के बाद या हर 20-25 किलोमीटर के बाद भाषा में थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाता है, हो जाता है। लड़की जिस माँ बाप के घर में है शादी के लिए जो घर चुनते हैं अपने बराबरी लेवल का ही चुनते हैं, फिर भी जब लड़की उस घर में गई तो कुछ कुछ शब्द उसको नए नए लगते हैं, होता है ऐसे, कई बार उसको समझ में नहीं आता है क्या बोल रहे हैं, लेकिन रोज रोज सुन सुन के अभ्यस्त हो जाती। तो शुरू में तो कहती पता नहीं क्या बोल रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बाद में पता नहीं तो क्या, वो भी वही शब्द यूज करती, अब मायके में भी आएगी तो वही शब्द यूज करेंगे और उसको बोलेंगे ये क्या बोलने लग गई है तू, अरे हमारे यहां वैसे ही बोलते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो भाषा का थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाता है। तो ऐसे ही परमात्मा की जो भाषा है ना, कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं आपको लगेंगे ऐसे शब्द तो हम यूज नहीं करते हैं, परंतु वो परमात्मा की भाषा है, और जिसका जैसे ही अर्थ समझ में आएगा और जैसे ही रोज रोज श्रवण करेंगे वो भी क्या हो जाएगा, जैसे लड़की ने ससुराल में गई पहले अजनबी से लग रहे थे शब्द, लेकिन रोज रोज सुना फिर खुद भी बोलने लगे, अब वो अजनबी लगते हैं नहीं लगते हैं। ठीक ऐसे ही मुरली में हो सकता है कुछ कुछ शब्द ऐसे आए जो आपको लगे ऐसा शब्द तो हमने कभी नहीं सुना, परंतु आपको उसका अर्थ बता दिया जाएगा, रोज रोज सुनोगे फिर आप भी यूज करने लग जाओगे, है ना। तो चलिए मुरली में हम सुनते हैं आज 12 अगस्त 2015 बाबा, क्योंकि हमको मीठा बनाने आया ना, तभी कहा ना शुभ शुभ बोलो तो अशुभ भी शुभ हो जाएगा। भले आज हम मनुष्यों में उतनी मिठास नहीं रह गई है, क्योंकि वो सत्वगुण हमारी सोच में नहीं है, वही जो दूसरे वाले संस्कार है वो है, तो उतने मीठे नहीं है, लेकिन क्या बनाने आया है बाबा हमको, मिठाई तो बनाने आया है ना। तो जो हमको बनना है वो ही हम सोच में लाए, वो ही हम एड्रेस करें। जैसे कहा ना चिंता है बोल के कहीं ये ना हो जाए कहीं, तो हम क्या कर रहे हैं वैसी परिस्थितियों को आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन सच्ची चिंता तो वो है उसके लिए अच्छा सोचे। तो भगवान भी चाहता है मेरे बच्चे मेरे जैसे बन जाएं, हम भले ही यात्रा में जाके थोड़ा सा उनको दाग आदि लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन अब तो धुलाई करना है, मेरे जैसे उसको बनाना है, तो वो हमको उसी दृष्टि से देखता है और मीठे बच्चे कहता है। तो रोज रोज मीठा मीठा सुन के बन जाएंगे ना मीठा, बन जाएंगे ना मीठा। हाँ, तो ये देखो बाबा की परमात्मा की ये टैक्ट है, क्योंकि वो जानता है मन की साइकोलॉजी क्या होती है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ, अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। स्पष्ट समझ में आया? भगवान जो ज्ञान दे रहा है उसको धारण करो बुद्धि में और फिर आपस में क्लास चलाओ। जैसे कहा ना, मेरे बेनिफिट से औरों को भी फायदा हो, कब होगा? जब सुनाओगे तब ना। तो आपस में क्लास चलाओ माना जहां भी आप रहते हो उन सबको बिठा के थोड़ा उनको भी सुनाओ, तो अपना भी कल्याण होगा औरों का भी कल्याण होगा। तो मेरा अपना कल्याण अपनी कमाई से भी, और जो मेरे कारण औरों का कल्याण हुआ उसकी दुआएं मिली वो भी मेरे में ऐड हो रही है। तो सच्ची कमाई कमाते रहो, क्योंकि यही तो कमाई साथ में जाएगी। बाकी जो कुछ हमने शरीर से लेके, हाँ, आत्मा ने गर्भ में प्रवेश किया, शरीर मिला, और उसके बाद माँ बाप रिश्ते धन दौलत जो कुछ मिला है आत्मा को, वो सब कुछ क्या होने वाला है? छूटने वाला है। जो सबसे पहले शरीर मिला था वही तो सबसे पहले छूटेगा, तभी सब छूट जाता है ना। जब तक वो है तब तक हम उसके पीछे लगे रहते, लेकिन जिस दिन जो सबसे पहले शरीर मिला था आत्मा को वो छोड़ देता है तो फिर सब कुछ छूटने लग जाते हैं। तो आत्मा क्या लेकर जाएगी साथ में? हाँ, यहाँ पर जो श्रेष्ठ कर्म किए, जो श्रेष्ठ कमाई की, जो अच्छे संस्कार धारण किए, वो ही साथ में लेके जाएंगे। तभी बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ, अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। अब ये रोज जब यहाँ पे आती रहेगी बात, कभी तो प्रैक्टिकल होगा नहीं होगा, थोड़ा सा भी अगर अटेंशन रखूंगी एक बात का भी, जैसे कहा अगर व्रत पकड़ा है, भले भूल गई, भूख लगी लगा खा लूं, लेकिन फिर तुरंत याद आया क्या है, आज मेरा व्रत है। तो ऐसे ही अगर ये गए होंगे अंदर महावाक्य, परिस्थिति के अनुसार आदत के अनुसार हो सकता है मैं जो ज्ञान है उसको नहीं यूज कर रही हूं, लेकिन तुरंत याद आएगा कि अरे मैंने आज क्या सुन के आई थी, आज बाबा ने मुझे क्या कहा था, और इस तरीके से हमको जीवन में परिवर्तन लाने में मदद मिलती जाती है। तो चूंकि कहा फर्स्ट डे है, समय का भी अभाव है, तो हम पूरी नहीं पढ़ेंगे। तो ये एसेंस मुरली का हेडलाइन के रूप में होता है, फिर प्रश्न उत्तर होता है, मुरली के अंदर से ही जो बाबा ने महावाक्य चलाए होते उसमें से ही वो प्रश्न उत्तर होता है, और फिर लास्ट में मुरली का सार होता है, वरदान होता है, स्लोगन होता है। तो हम पूरी मुरली न पढ़ के हम सीधा सार पे आ जाते हैं आज। हाँ, तो आज की मुरली का सार, लेकिन सार से पहले, क्योंकि भगवान ज्ञान दे रहा है, मतलब भगवान ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के सुनाते थे ना, तो हमें हमेशा ये स्मृति रखनी चाहिए, यहाँ सुनाने के लिए कोई भी बैठा हो लेकिन किसके महावाक्य सुन रहे हम? परमात्मा के महावाक्य। जैसे कहते हैं ना कि अगर पंखों में ताकत है तो आसमान दूर नहीं होता है ना, पंखों में अगर ताकत है तो आसमान दूर नहीं, हौसले अगर बुलंद है तो मंजिल दूर नहीं, और उस परमात्मा के लिए लगन है तो भगवान दूर नहीं। तो हमारे अंदर में अगर उसके प्रति लगन है, वो सोच है, तो मेरे लिए कौन पढ़ रहा है मुरली? स्वयं भगवान पढ़ रहा है, भगवान आया है। और जैसे हम रिश्ते माने ही क्या, एक्सचेंज एक दूसरे के प्रति, तो हम एक दूसरे को विश भी तो करते हैं ना, तो पिता भी जब आता है, ज्ञान सुनाता है, मीठे मीठे बच्चे कहकर एड्रेस करता है,
और जब जाता है तो वो भी, हाँ आप कहीं जाएंगे तो फिर से विश कर देना, अच्छा चलते हैं, नमस्ते, ऐसे करते हैं, नहीं करते हैं। तो परमात्मा भी ज्ञान सुना के जब उसने, क्योंकि वो शिव की सवारी कहते हैं ना हम, शिव की सवारी बैल पर, ऐसे ही कहते हैं ना। परमात्मा क्योंकि अजन्मा है तो हमारी तरह माँ के गर्भ में जाकर शरीर नहीं ले सकता है, लेकिन उसको ज्ञान सुनाने के लिए हमारी तरह वाला ही शरीर चाहिए, तो वो सवार हो जाता है। इसीलिए गाया हुआ है शिव की सवारी बैल, और बैल माना पुरुष तन, ब्रह्मा के तन में वो प्रवेश करता है, और इसकी वो भक्ति मार्ग में ऐसी यादगार दिखा दी है कि वो बैल पे सवार होता है। और सवारी, सवारी पर घर बसाया जाता है क्या? हा? सवारी पर घर बसाया जाता है, काम के लिए बैठे सवारी पे, काम पूरा हुआ, सवारी अपनी जगह, मैं अपनी जगह। तो परमात्मा पिता भी आते हैं, ब्रह्मा के तन में सवार होते हैं, मुखारविंद से ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान सुना के फिर उसने जाना है। तो जाते समय क्या कहते जाते हैं, हाँ, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो आपको कोई नमस्ते करे तो आप क्या करेंगे? आप भी तो नमस्ते करेंगे ना। तो हम सब भी उस मिलकर उस रूहानी पिता को क्या कहते हैं, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को गुड मॉर्निंग, याद प्यार और नमस्ते। यही तो एनर्जी एक्सचेंज है, नहीं? तभी तो रिलेशन पक्के बनेंगे, और तभी तो वो हमको यादों में बसे रहेंगे। जब कोई बात आएंगी तो दिल करेगा इसको पहले शेयर करूं, ऐसे ही होता है ना। और जब इसको पहले शेयर करेंगे तो इसके पास तो पॉजिटिव एनर्जी है, तो वो अच्छी पॉजिटिव एनर्जी भी देगा और बहुत अच्छी टचिंग भी देगा, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस परिस्थिति को ऐसे डील करना है, लेकिन वो ऐसे टचिंग देगा कि आपको लगेगा नहीं ये करने के लिए मेरा मन कह रहा है, मतलब वो उसकी टचिंग होगी आपको और काम समझ जाएंगे। तो ये रिश्ता पक्का करना है। तो धारणा के लिए पूरी मुरली का जो सार है वो सुनाती हूं मैं। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, ध्यान रखना है कि मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर भटकता तो नहीं है। ये फिर वैसा ही हो जाएगा, पूजा अर्चना कर रहे थे, आरती घुमा रहे थे, लेकिन मन कहीं और घूम रहा था, तो क्या होगा? जो प्राप्ति होनी चाहिए वो तो होगी नहीं, ज्ञान यहां बैठेगा ही नहीं। तो प्रैक्टिकल कर्म क्षेत्र में कौन सी टिप्स यूज करनी है आज, वो तो पता ही नहीं। इसलिए बाबा कहते अपनी चेकिंग करते रहो, सुनते सुनते भी, मेरा मन किधर है इस समय, हाँ बाबा जो सुना रहे उसमें लगा हुआ है या कहीं और, और अगर है तुरंत उसको खींच लो यहाँ पे, क्योंकि मन भी एक बच्चा है। एक बच्चे को अगर आप ट्रेनिंग नहीं दोगे तो क्या होगा? डिसिप्लिन में लाना माँ बाप का काम है ना। तो मेरा मन मेरा बच्चा है, मैं आत्मा हूँ, मन बुद्धि संस्कार मेरी शक्तियां है ना, तो एक तरीके से बच्चा है, वो इधर उधर चला जाता है, उसको फिर से नहीं बेटा इधर बैठो, इधर सुनो, ऐसे अपने आप से अंदर डायलॉग करना है। तो बाबा कह रहे हैं ध्यान रखना है कि मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर भटकता तो नहीं है, सदा स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। ये भी याद की यात्रा है, मतलब उसके साथ जुड़े रहेंगे ना उतनी देर, तो ये भी यात्रा। आपको राज्यों की अलग जो विभिन्न अवस्थाएं बताई उसमें बताया ना, इस राज्यों को हम यात्रा से भी कंपेयर करते हैं, क्योंकि इसमें रूह जा रही है, शरीर वहीं बैठा है लेकिन रूह परमात्मा से, माना वो भी तो एक रूह है लेकिन परम रूह है, उसके साथ कनेक्ट है, तो ये भी याद की यात्रा है। दूसरा पॉइंट, अपने आप को देखना है कि हमारे में ज्ञान योग और दैवी गुण है। अपने आप की चेकिंग, हमेशा करते रहें कि मैं जैसे स्कूल में बच्चा गया, पढ़ के आया, फिर क्या होता है, मैडम ने आज जितना पढ़ाया उधर यहाँ है या नहीं, बार बार पढ़ते हैं ना ताकि यहाँ बैठ जाए, जो मैनर्स सिखाए वो मैनर्स में कर रहा हूँ या नहीं, वो माँ बाप पूछते हैं ना आज क्या पढ़ाया मैडम ने, अगर वो कुछ भी ऐसे रोता, मैडम ने ऐसे मैनर्स सिखाए तेरे को, ऐसे ही बोलते हैं ना बच्चों को, और ऐसे बोल बोल के उसको डिसिप्लिन में मैनर्स में लाते हैं और वो पढ़ाई उसकी बुद्धि में बिठाते हैं। ठीक ऐसे ही बाबा कहते अपने आप को चेक करो, यहाँ पे मैडम भी हम ही है और स्टूडेंट भी हम ही है, तो अपने आप को देखना है कि हमारे में ज्ञान योग और दैवी गुण है, लालच का भूत तो नहीं है, माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता है, माया माना ही विकार और विकर्म माना विकारों के प्रभाव में आकर जो कर्म करूंगा वो विकर्म, भाई गुस्से में आकर मैंने कुछ कर्म कर डाला वो विकर्म बन गया, लेकिन परिस्थिति भले गुस्सा दिलाने वाली थी लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि मुझे पता है मेरा ओरिजिनल संस्कार शांति का है, तो मैंने शांति का संस्कार यूज करके उस परिस्थिति को पार किया तो वो कर्म श्रेष्ठ कर्म हो जाएगा। तो तब बाबा कह रहे हैं माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता है, ये अपनी चेकिंग करनी है। और इसके बाद एक वरदान होता है, क्योंकि परमात्मा पिता सदगुरु भी है ना, परम सदगुरु भी है, तो सदगुरु तो क्या करता है, वरदान देता है ना, और वरदान माना क्या होता है कि जो चीज मैं अपने बलबूते पे समझता था कि ये तो मेरे से कदाचित नहीं हो सकता, और इसीलिए तो हम जाते हैं ना गुरुजी थोड़ा आशीर्वाद करो, माना आप अगर आशीर्वाद करेंगे तो हो जाएगा, ऐसे ही होता है ना, तो वरदान माना अगर परमात्मा ने ये मुझे वरदान में दिया है, माना कि बेटा अगर इसको प्रैक्टिकल करोगे सफलता मिल जाएगी। तो वरदान हर दिन बाबा देते हैं सदगुरु के रूप में। क्या है आज का वरदान, हद की सर्व कामनाओं पर जीत प्राप्त करने वाले काम जीत जगत जीत भव। हद की सर्व कामनाओं पर जीत प्राप्त करने वाले काम जीत जगत जीत भव। फिर इसी वरदान को थोड़ा सिंप्लीफाई करके बाबा के महावाक्य इसको अच्छी से समझ जाओगे, काम विकार का अंश सर्व हद की कामनाएं हैं। जो मुख्य लाइन पढ़ी ना वरदान की, उसका ये स्पष्टीकरण है, काम विकार का अंश सर्व हद की कामनाएं है। अगर काम विकार है इसी से जन्म होगा कामनाओं का। कैसे, देखो काम विकार के वश बच्चे को जन्म दिया, बच्चे ने मेरा कहना नहीं माना, मेरी रचना है, गुस्सा आया, होता है नहीं होता है। अच्छा मेरे बच्चे को पढ़ाना है, ये करना है, ऊंची स्कूल में एडमिशन डालना है, तो कई बार अपने मूल्यों को भी एक साइड रखकर बस कमाना है, फिर चाहे किसी को धोखा देना पड़े चाहे कुछ करना पड़े, समझ में आ रही ना बात। तब बाबा कह रहे हैं काम विकार का अंश सर्व हद की कामनाएं हैं। तो माना हद की कामना रखेंगे तो ये होता है, कामना एक है वस्तुओं की, दूसरी है व्यक्ति द्वारा हद के प्राप्ति की, तीसरा है संबंध निभाने में, चौथी है सेवा भावना में, हद की कामना का भाव। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति विशेष आकर्षण होना, हाँ, और उसमें भी बड़े रॉयल तरीके से, इच्छा नहीं है लेकिन ये अच्छा लगता है। नहीं, कई बार हमको कोई चीज अच्छी लगी, इच्छा हो रही हो तो हम किस रूप में बोलते हैं, नहीं नहीं मेरे को इच्छा नहीं है परंतु अच्छा लग रहा है। तो बाबा कह रहे ये भी काम विकार का अंश है। तो जब यह सूक्ष्म अंश भी समाप्त हो तब कहेंगे काम जीत जगत जीत। अर्थात यहां पर फिर निगेटिव चलता रहेगा ना, अगर एक कामना आई उसकी पूर्ति के लिए तो यहां अगर निगेटिव तो भेजा सबको निगेटिव, शरीर को भी जाता है ना, मन का असर शरीर को, पहला मन का असर मन को ही मिलता है। दुख भरी बातें अंदर में चलती रहे तो दुखी कौन हो रहा है? मन। तो मेरी सोच का असर पहले मन भुगतता है, फिर मेरी सोच का कौन भुगतता है? शरीर। उसके अनुसार शरीर को रोग लग जाते हैं। तो इसको शरीर किससे बना है? प्रकृति के पांच तत्व से। इसलिए कई बार लोग नहीं, तबीयत के लिए प्रकृति शब्द यूज करते, मेरी प्रकृति आज ठीक नहीं, पता है ऐसे बोलते कई बार, क्योंकि प्रकृति के पांच तत्वों से बना है। तो मन का असर मन पर, मन का असर प्रकृति पर, ये लिमिट प्रकृति है, क्योंकि बेहद के जो पांच तत्व है उसमें से कुछ थोड़ा थोड़ा लेके ये शरीर बना, तो ये हद की प्रकृति, और बेहद में तो है ही है। और जहां है यहां मन है, ऐसे हर प्रकृति के अंदर एक मन बैठा है, आत्मा है। तो इस मन का, सोच का असर अपने मन पर, इस हद की प्रकृति माना शरीर पर, फिर सामने वाली आत्मा जिसके संपर्क में आ रही उसको, और बेहद में जो पांच तत्व प्रकृति उस पे। तो अगर निगेटिव जा रहा है तो सब कुछ निगेटिव मेरे फेवर में, पॉजिटिव जा रहा है तो सब कुछ मेरे फेवर में पॉजिटिव। और जब सब कुछ अगर मेरे फेवर में पॉजिटिव कब होगा? जब यहां से पॉजिटिव, तभी हम क्या हो जाएंगे? जगत जीत। तो ये है, सदा इस मन को पॉजिटिव रखो। ये इच्छा, ये सब लालच, ये भी क्या है? विकार का ही अंश है। तो इसमें ना फंसे, ये आज बाबा ने वरदान दिया है। तो हमें क्या रहना है? मन को सिर्फ पॉजिटिव रखना है। और आज का स्लोगन है, दिल की महसूसता से दिलाराम बाप की आशीर्वाद लेने के अधिकारी बनो। क्या कहा? दिल की महसूसता से दिलाराम बाप की आशीर्वाद लेने के अधिकारी बनो। दिलाराम माना, दिलाराम बाप माना वो बाप जिनकी बातें सुनकर, जिसकी एनर्जी प्राप्त करके दिल को आराम मिल जाता है, उसको कहते हैं दिलाराम, दिल को आराम पहुंचाने वाला। तो उससे मुझे आराम कब महसूस होगा? जब मेरा दिल उसके साथ कनेक्ट होगा, वो जो कह रहा है वो मेरे अंदर में महसूसता होगी, सचमुच बाबा जो कह रहा है मेरे लिए, मेरे भले के लिए कह रहा है, उसके प्रति मेरी वो दिल की भावना। तो फिर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक क्या आ जाएगी? आशीर्वाद आ जाएगी ना, ऑटोमेटिक आशीर्वाद आ जाएगी। तब कह रहे हैं, दिल की महसूसता से दिलाराम बाप की आशीर्वाद लेने के अधिकारी बनो। हम ऐसे कितना भी कह दे, मेरे पे आशीर्वाद करो, मेरे पे आशीर्वाद करो, हाँ, अंदर में कुछ हो ही नहीं तो आशीर्वाद होती है क्या? मैं कुछ ऐसा करूं जो सामने वाले को पसंद आता, तब कहता है ना बेटा जुग जुग जियो, तभी होता है ना ऐसा। तो मैं उसके दिल की भावनाओं के साथ जुड़ जाऊं, दिल में उसको बसाऊं, तब तो उसकी ब्लेसिंग, दिल में बसाऊं माना उसकी हर शिक्षा को प्रैक्टिकल जीवन में उतारूं, उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करूं, उसके साथ दिल की हर बातें शेयर करूं, तब उसके आशीर्वाद के हम पात्र बन जाएंगे। और सर्वशक्तिवान दिलाराम बाप की अगर हमको आशीर्वाद है तो जीवन के क्या कहने, हाँ, तकदीर पूरी हमारी संवर जाएगी, जीवन पूरी हमारी बदल जाएगी। तो हम यहां क्यों आए थे? घूमने के लिए, हाँ, बदलने के लिए। क्या बदलने के लिए? सोच को बदलने के लिए, वो सोच जिससे मेरा जीवन संवर जाए। तो ये बदली हुई सोच के साथ जाएंगे ना अभी आप, कि जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे? हाँ, कैसे जाएंगे? जो समझते हैं कि अभी हम बदली हुई सोच के साथ जाएंगे, जो कलयुगी सोच के साथ आए थे वैसे नहीं, ये सत्युग वाली जो सोच है उसके साथ जाएंगे, जरा हाथ तो खड़ा करें। बहुत बधाई हो, और इससे आपका अपना ही जीवन संवर जाएगा। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ कि आप सदा ही हंसता खेलता मुस्कुराता खुशनुमा जीवन जीते रहें और ऐसे ही सबके जीवन को बनाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज शिविर को यहाँ पर हम विराम देते हैं और आपकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं कि आपकी यात्रा भी अच्छी रहे, घर भी बहुत अच्छे से पहुंच जाए। अभी उठ क्यों रहे हैं इतना जल्दी? अभी 8 ही तो बजे हैं ना? शुक्रिया नहीं करेंगे? शुक्रिया नहीं करेंगे? किसका शुक्रिया? किसका शुक्रिया? पहले तो अपने आप का कि हमने इस निमंत्रण को स्वीकार किया, यहाँ तक पहुँचे, तो अपने आप को शाबाशी दो, शुक्रिया दो कि हमने बहुत अच्छा कदम उठाया यहाँ आने का। हाँ, और किसका शुक्रिया? जिन्होंने निमंत्रण दिया उनका शुक्रिया। और किसका शुक्रिया? उन्होंने भी इस हेडक्वार्टर से निमंत्रण मिला उनको भी। हाँ, हेडक्वार्टर में जिन्होंने आयोजन किया उनका शुक्रिया। और इस आयोजन को सुचारू रूप से चलाने में जितने भी डिपार्टमेंट ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना सहयोग दिया उन सब का शुक्रिया। और ये सब के निमित्त तो वो पिता परमात्मा था, उसका भी तहे दिल से शुक्रिया। कहते नीर न हो तो नदियां किस काम की, अश्रु न हो तो अखियां किस काम की, और आप जैसे परमात्म प्रेमी नहीं हो तो ऐसे शिविर आयोजन का काम क्या। तो आप जैसे परमात्म प्रेमी आए तभी ये शिविर सफल हुआ। तो आपको भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया बारंबार है। और अब तो शिविर में आए थे, लेकिन अब अगली बार कैसे आओगे? पक्के स्टूडेंट बनकर? हाँ, पक्के स्टूडेंट बनकर आओगे ना? अभी रोज जाके वहां स्टडी करेंगे, जीवन में परिवर्तन लाएंगे, कुछ जीवन की जो इस विश्वविद्यालय में जो कहा परमात्मा आते हैं गुलजार दादी के तन में, वो भी सीन देखना है या नहीं देखना है? मिलना है उनसे रूबरू तो आना पड़ेगा ना फिर से। हाँ, तो उसके लिए भी आपको इन एडवांस निमंत्रण है। लेकिन इस निमंत्रण में तो हमने आपको निमंत्रण दे दिया, आ जाइए, आप आ गए, लेकिन वो निमंत्रण के लिए कुछ कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि रेगुलर स्टडी करेंगे तो बुलाएंगे हम फिर उसके लिए। और क्या कंडीशन है? सत्संग माना ही रेगुलर स्टडी और उसके साथ रेगुलर कनेक्शन, सत्संग। और क्या? थोड़ी सी अन्न की शुद्धि। आपने देखा यहाँ पे जो भोजन बना, सबको पसंद आया? पसंद आया? तो इस भोजन में ना लहसुन प्याज नहीं था, फिर भी अच्छा लगा। अच्छा लगा तो ऐसा बना सकते हैं घर में? ऐसा बना सकते हैं घर में? अन्न की शुद्धि, जिसमें नॉनवेज तो बिल्कुल कट ही हो जाता है, लेकिन साथ साथ वेज के अंदर भी लहसुन प्याज का भी थोड़ा परहेज रखेंगे, अन्न की शुद्धि होगी। और साथ साथ वो अन्न भी, अब जो ज्ञान मिला ना, मैं आत्मा हूं, पिता की संतान हूं, उस स्मृति के साथ बनाए बड़े प्यार से और उसको भोग के रूप में स्वीकार करें, फिर सबको खाएं और खिलाएं, ये है अन्न की शुद्धि। तो ये भी थोड़ा धारण करेंगे, इसमें आपकी प्रगति होती रहेगी। और दैवी गुण की धारणा माना ही अटेंशन रखेंगे, जो मुझे पता चला मेरे अंदर सतो गुण है। अभी तक मैं समझता था वो बाहर से मिलेंगे और मेरे अंदर तो क्या है, गुस्सा है, नफरत है, चिंता है, ये समझता था ना? नहीं, अब मुझे पता चला वो मेरे अंदर सत्व गुण है, वो मेरे ओरिजिनल है, तो हर प्रैक्टिकल कर्म में मैं उसको यूज करूं, इसका अटेंशन, जिसको हम कहते हैं दैवी गुणों की धारणा पर अटेंशन रखेंगे। और चौथा ब्रह्मचर्य का, मन में भी हम पवित्र सोचे सबके लिए और व्यवहार में भी शुद्धि से व्यवहार में हम आए। ये है थोड़ी सी परहेज बातें, जिन पर ध्यान रखेंगे, अटेंशन रखेंगे, तब यही बहनें जिन्होंने यहाँ के लिए निमंत्रण दिया वो अपने आप कहेंगी, भाई जी, बहन जी, उस पिता के प्यार में आपने अपने जीवन को बहुत अच्छा ढाल लिया है, बहुत अच्छा परिवर्तन लाया है, चलिए उस पिता से रूबरू मिलने के लिए, ठीक है? तो फिर आप आ जाना उनके निमंत्रण के साथ यहाँ पे। ओम शांति। एक अनाउंसमेंट कर देती हूँ। अच्छा, एक बालिका आपके सामने नृत्य करना चाहती है, तो अभी वो आएगी। और साथ साथ जो आपने देखा कि चलती क्लास में एक भाई आए थे ऊपर, उन्होंने लिखा है राजयोग द्वारा, माना जो कल क्लास हुआ था ना सुबह में अष्ट शक्तियों वाला, तो वो कह रहे कि हम घूमने चले गए थे, इस कारण से हमने मिस किया, उस पर प्रकाश डालिए, लेकिन समय की सीमा निर्धारित है, हम नहीं डाल सकते अभी, लेकिन एक बात की गारंटी मैं आपको अवश्य देती हूँ। वो बताते हैं कि एक बार बच्चे को जब धरती में आना था, परमात्मा उसको भेज रहे थे, माने बात को समझाने के लिए परमात्मा एक बार बच्चे को नीचे भेज रहे थे, तो बच्चे ने कहा, आप मुझे नीचे भेज रहे हो, किसके भरोसे पर भेज रहे हो? वहां मैं जाऊंगा, कौन मेरा अपना होगा? अपनी जरूरतें मैं किसको कहूंगा? तो परमात्मा कहते है, कोई भरोसेमंद, उसी भरोसे पर मैं तुमको भेज रहा हूं, ऐसे ही नहीं भेज रहा हूं। कहा, कौन है बताओ तो सही, वो कौन है भरोसेमंद जिसके भरोसे पे आप मुझे अपने से अलग करके नीचे भेज रहे हो? कहता है, वो हस्ती है जिसको सारी दुनिया माँ कहकर पुकारती है। वो माँ तेरी हर जरूरत का ख्याल रखेगी, तेरी हर बात को पूरा करने का प्रयास करेगी। तो ऐसे ही, वो तो शारीरिक माता पिता की बात है, लेकिन यहाँ तो हम परमात्मा के कौन से बच्चे हैं? रूहानी बच्चे हैं। तो ये परमात्मा पिता के घर में, उस रूह पिता के घर में, ये जो आप सभी रूहानी बच्चे पधारे, अब वापस अपने अपने कर्म क्षेत्र पर जाओगे ना, तो हम गारंटी देते हैं हमारे जितने भी सेवा केंद्र है, परमात्मा ने वहां एक एक बहन को या भाई को निमित्त बनाया है, ताकि मेरे रूहानी बच्चे जब कोई बात समझ में नहीं आए तो किसको पूछे? आपको पूछे। तो जो भी बातें रह गई है ना, अब आप जहां जहां से आए हो, निकटतम सेवा केंद्र, वहां जाकर वहां के निमित्त भाई या बहन जो भी हो, उनसे जाके जो भी प्रश्न है उनका हल पूछ सकते हो। हमें गारंटी है वो सब उसी सेवा में रत है वहां पर, इसीलिए तो आपको निमंत्रण दिया, हाँ, यही तो सेवा है उनकी। तो ये आपको आंसर जरूर मिल जाएगा। ओम शांति।
चरणों में जगह मांगी थी हमें, दिल में बसा लिया।
चरणों में जगह मांगी थी हमें, दिल में बसा लिया।
एक नजर के दया से नजरों में समा लिया।
आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया,
आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकाल दर्शी,
वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकाल दर्शी।
जन्मों के पुण्य फले हैं, प्रभु दया है इतनी बरसी, पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया।
पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया।
हे एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया।
आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया,
आपका शुक्रिया, आपका
जो बालिका नृत्य करना चाहती है भले आ जाए। भैया इनके लिए गीत बजा देना।
अलग बोली अलग भाषा है, बात नैनो से हो कान्हा की यही आशा है।
कान्हा की ये जो नैना है तुम्हें गोपियों के कहना है, कान्हा की ये जो नैना है तुम्हें गोपियों के कहना है। मिली नजरिया हुई बावरिया गोरी गोरी सी कोई गुजरिया,
कान्हा का प्यार किसी गोपी के मन में जो पले, किस लिए राधा जले राधा जले राधा जले,
राधा कैसे न जले,
किस लिए राधा जले
राधा कैसे न जले,
किस लिए राधा जले किस लिए राधा जले,
राधा कैसे न जले
किस लिए राधा जले
किस लिए राधा जले।